ओम शांति। पहला प्रश्न तो आप सभी से है कि कल के दिन को हम सभी साधना दिवस के रूप में मनाएंगे, स्वीकार है सभी को? क्योंकि बाबा से मिलन, भगवान से मिलन, उसका संपूर्ण सुख हमें अपनी स्वयं स्थिति के आधार से मिलता है। बाबा हमारे सामने बैठा हो और हमारी स्थिति ढीली हो तो हम संपूर्ण सुख प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए सोने से ही आज से ही शुरू करेंगे और कल उठते ही सारा दिन शाम तक हमें क्या क्या अभ्यास करने हैं वो हम आपके सामने कुछ बातें रखेंगे और सभी को अपने मन में ये दृढ़ता रखनी है कि कल हमारा दिन सुंदर साधनाओं में बीते। चाहे क्लासेज होंगी, क्लास करते करते भी कुछ अभ्यास करेंगे, मैं आपके सामने वो रखूंगा। और यदि आप कल ऐसा करेंगे तो आप अपने सारे जीवन के लिए ये सीख सकेंगे कि हमें कर्म क्षेत्र में रहते हुए किस किस तरह से अभ्यास करके स्वयं को श्रेष्ठ स्थिति में ले जाना है। तो सभी बहने भी तैयार है ना कल साधना दिन मनाने के लिए? इसलिए मौन रखना होगा। बोलो बहने मौन रख सकेंगी? रखेंगी ना सभी माताएं? क्योंकि यदि माताएं मौन रख लेती हैं तो सारा संसार शांत हो जाएगा। देखो भाइयों को खुशी हो गई आपकी महिमा सुनकर। क्योंकि मनुष्य की बहुत ज्यादा शक्तियां बातों में व्यय होती हैं और बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म राज हम सबको बताया हुआ है और मैं क्लासेज में उसे इस तरह कहता हूँ कि आप अपने से बातें करें, हमें बाबा से मिलन का सुख चाहिए या आपस में बात करने का सुख, स्वयं से पूछेंगे क्या प्रिय है हमें। 84 जन्म हम मनुष्य आत्माओं से बात करते आते हैं, अब यदि भगवान से बात करने का सुख पाना है तो बातें छोड़नी ही पड़ेंगी। जो बातें छोड़ दे वो ईश्वरीय मिलन का आनंद प्राप्त करे। तो कम से कम कल के लिए सभी बातें, लौकिकता के विचार सभी छोड़ कर रखने हैं। मैं मर्यादाओं पर भी चर्चा करूंगा, लेकिन पहले ये एक दो बात आपके समक्ष है। एक और छोटी सी चीज मुझे आपके सामने रखनी है, हम सभी के जीवन के लिए बहुत उपयोगी बात है। हाँ, उसे इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग नेचर। कई मनुष्यों की होल्डिंग नेचर होती है। होल्डिंग नेचर का अर्थ है बातों को पकड़ कर रखना, होल्ड कर लेना। तो कुछ बातों को मनुष्य पकड़ के रख लेता है। कोई बात 10 साल पहले हुई है, 5 साल पहले हुई है, 10 दिन पहले हुई है या कल हुई है, हम उसे छोड़ के चलें, पकड़ के न रखें, ऐसी विशालता और सरलता हमें अपने अंदर भरनी है। बाबा इसके लिए बहुत अच्छी बातें कहते हैं। देखिए समय की रफ्तार कैसी सुंदर है। बातें आ रही हैं और जा रही हैं। न समय तैर रहा है न बातें तैर रही हैं, ठीक है ना। हम उन्हें ठहराना क्यों चाहते हैं? हमारे ठहराने से भी वो ठहरेंगी नहीं। यदि हमने बातों को पकड़ना चाहा तो हमें उनमें उलझ कर रह जाएंगे, बातें तो और आगे बढ़ जाएंगी। इसलिए अपने जीवन की गति समय की गति के अनुसार ढाल देनी है कि जैसे समय गतिमान है, जैसे बातें आ रही हैं और जा रही हैं, हम भी गतिमान रहें, बातों को जाने दें, उन्हें पकड़ कर न रखें। क्योंकि मनुष्य के पास ये होल्डिंग नेचर है, बातों को पकड़ कर रखने की आदत है, इसलिए शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं। हमें एक सूक्ष्म रहस्य जान रखकर हमेशा याद रखना चाहिए कि जो संकल्प हमने अपने मन में रख लिया वो बार बार हमारे अंदर निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता रहेगा। माताएं भी समझ लें, जो उल्टा संकल्प हमने अपने अंदर रख लिया वो बार बार हमारे अंदर में गलत एनर्जी को उत्पन्न करता रहेगा और उससे शरीर की बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए जीवन में बहुत ध्यान रखना है कि कोई संकल्प, बातें भी संकल्प रूप में रहती हैं अंदर, उसको जो गलत है उसको अपने अंतर मन में स्थान नहीं देना है। प्रैक्टिस की जरूरत है इसके लिए, बहुत अच्छे विवेक की भी जरूरत है कि हमें अपने अंतर चित्त को, अपने विवेक को संपूर्ण रूप से खाली रखना है ताकि बाबा का दिव्य विवेक उसमें भरता रहे। उससे हमारा तन भी पावन हो जाएगा और मन भी। हम रोज मुरलियों में सुनते हैं, बाबा हम सभी को पावन बनाने आए हैं। संपूर्ण पवित्रता इस संसार में सबसे बड़ी चीज है। जब इस धरती पर थोड़ी आत्माएं भी संपूर्ण पवित्रता के समीप पहुंच जाएंगी तो ये संसार तेजी से बदलने लगेगा। हमें प्रकृति को बदलना है, सारे वायुमंडल को बदलना है, स्वयं को भी पावन करना है। इसलिए बाबा ने पवित्रता के लिए मुख्य केंद्र पवित्रता है, उसको केंद्र बनाकर अनेक मर्यादाएं हम सबको सिखाई हैं। कुछ भाई बहने मर्यादाओं को बंधन समझते हैं। विदेशों में हम देखें, हमारे यहाँ विदेशी लोग भी बहुत आते हैं, भारत के भी बहुत सारे लोग मर्यादाओं को बंधन समझते हैं। क्यों? स्वतंत्र जीवन, स्वच्छंद जीवन जीने की आदत है। आत्मा तो स्वतंत्र है, लेकिन आत्मा स्वतंत्र तभी रह सकती है जब वो अपने को कुछ मर्यादाओं में बांधे। आत्मा की स्वतंत्रता के लिए कुछ बंधन आवश्यक है। इसलिए बाबा ने हम सभी को पवित्रता के संबंध में अनेक मर्यादाओं के बंधन दिए हैं। वो सब हमारे लिए कल्याणकारी हैं। हम ये सोच लेते हैं भला इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये बात क्यों, ये बात क्यों, लेकिन हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी स्थिति को महान बनाने के लिए बाबा ने वो लक्ष्मण रेखाएं हमारे लिए खींच दी हैं। देखिए आप सब जानते हैं लक्ष्मण रेखा सीता के चारों ओर लक्ष्मण के द्वारा खींची हुई ऐसी शक्तिशाली थी कि रावण उसको पार नहीं कर सकता था, यदि करता तो वो जल जाता। हमारी भी मर्यादाओं की रेखाएं ऐसी शक्तिशाली हैं उसे माया पार नहीं कर सकती, करेगी तो नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें इन मर्यादाओं को कल्याणकारी समझते हुए अपने जीवन को रॉयल बना लेना है। मैं एक छोटी सी मर्यादा की बात आपके सामने करूं, भोजन की। और आप सभी जो संसार में रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं भोजन का कष्ट होता है। बहुत सिंपल सी फिलोसोफी हम सबको याद रखनी चाहिए कि प्रकृति में, बहुत ध्यान से सुनेंगे आपको ये सिद्धांत अनेक जगह काम आएगा, प्रकृति मनुष्य के संकल्पों के वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेती है। मनुष्यों से भी बहुत अधिक ज्यादा सेंसिटिव है प्रकृति। प्रकृति की ग्रहण शक्ति, मनुष्य के वाइब्रेशंस को ग्रहण करने की शक्ति बहुत तीव्र है। हमारे घर में यदि पानी रखा है, मात्र सब अपने घरों में पानी रखते हैं, जग में भर के, घड़े में, किसी टंकी में, हम सबके जो वाइब्रेशंस उस घर में होते हैं वो पानी एब्जॉर्ब करता रहता है, पानी उन्हें सोखता रहता है और जो भी उसको पीता है वो उसके अंदर चले जाते हैं। भोजन हम बनाते हैं जिस फीलिंग में, जिस भावना में। देखिए कई चीजें काम करेंगी, हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं, हमारा प्यार, हमारा योगयुक्त संकल्प, योगयुक्त स्थिति, इन सब को भोजन तत्काल ग्रहण कर लेता है। अब हमें स्वयं विचार कर लेना है कि जैसा भोजन हम खाएंगे उसका प्रभाव हमारी स्थिति पर अवश्य आएगा। बाबा के ये महावाक्य हैं कि यदि तुम योगयुक्त भोजन खाओ, मुझे याद है मैंने 68 में दिल्ली राजौरी गार्डन में बाबा का ये मैसेज सुना था कि यदि तुम योगयुक्त बनाया हुआ भोजन और योग में खाओ तो आत्मा 50% पावन तो भोजन से हो जाएगी, 50% आधी पवित्रता, आत्मा का आधा शुद्धिकरण पवित्र भोजन से हो जाएगा। ऐसे ही बाबा ने हम सब के लिए बोल की मर्यादाएं निश्चित की हैं। अब आप स्वयं अपनी स्थिति और परिस्थितियों को देखते हुए जब आप कहीं लौकिक में जाते हैं तो आपको क्या करना है जो आपका भोजन ठीक रहे, शुद्ध रहे, इस पर आप स्वयं विचार करेंगे। बोल की मर्यादा, बाबा ने इसमें मुरलियों में हमें एक ही लाइन में सारा राज बता दिया, तुम्हारे मुख से ज्ञान रतन निकले। ये मर्यादा है, हमारे बोल किसी को कष्ट न दें। आज भी बाबा ने कहा मुरली में एक दो बार, चेक करो हम किसी को सताते तो नहीं हैं। हम अपने ब्राह्मण परिवार में देख सकते हैं बहुत बहुत बड़ा पाप दूसरों को सताना है। बड़े बड़े पाप तो छूट जाते हैं लेकिन दूसरों को कष्ट पहुंचाना, मानसिक रूप से हिंसा कर देना, दूसरों की खुशी को छीन लेना, ये बहुत बड़े पाप का खाता बढ़ा देता है हमारे अंदर और इसका परिणाम बहुत खराब होता है। हम अनेकों की शरीर छोड़ने की बातें सुनते रहते हैं रोज। कभी अभी आप लोगों ने सुना हो, न सुना हो तो मैं सुना देता हूँ। चंडीगढ़ में एक भाई ने शरीर छोड़ा। देखिए कितनी सुंदर गति है, पैदल चलकर आता था रोज घर के सेंटर पर, वो उस दिन भी आया, अभी की बात है, 15 दिन शायद हुए होंगे, पैदल चल के सवेरे सवेरे शंकर पर आया। बाबा के कमरे में बैठता था, बाबा के कमरे में बैठा, याद में बैठा, एक मिनट में ऊपर, कितनी सुंदर गति। लोग सोचते हैं दुनिया में भी आप ये शब्द सुनते होंगे, हमारे यहाँ भी लोग बोलते हैं कि भाई हम ऐसी अपनी जीवन की यात्रा तय करें कि हमारा अंत सुहाना हो, अंत सुखद हो, अंतिम यात्रा कष्टदायक न हो। बहुतों की अंतिम यात्रा कष्टदायक इसलिए हो जाती है कि जीवन में अनेकों को कष्ट दिया है। इसलिए याद रखना है, ये हमारी मर्यादा है, हम भगवान के बच्चे हैं। जैसे हमारा बाप दूसरों के कष्ट हरने वाला है, वैसे ही हम भी कष्ट हरने वाले हैं, कष्ट देने वाले नहीं। एक बाबा का महावाक्य आपको याद दिला दूं, 78 की मुरली का है, सुना होगा आपने। बाबा ने कहा कि तुम्हें 63 जन्मों के विक्रम विनाश करने में समय नहीं लगता, समय लगता है ब्राह्मण बनने के बाद किए गए विकर्मों को नष्ट करने में। बहुत सुख संगति है पुण्य और पाप की। तो हम सभी बोल की मर्यादा पर विशेष ध्यान दें, हमारे बोल मर्यादित हों, हमारी शालीनता के अनुरूप हों। हम बहुत महान हैं, बाबा हमें याद दिलाया करते हैं तुम सबसे बड़े कुल के हो, सूर्यवंशी हो, देव कुल की आत्माएं हो, भगवान के बच्चे हो, इसलिए तुम्हारे बोल तुम्हारी रॉयल्टी के अनुकूल ही होने चाहिए। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे अपने जीवन में। हमारी मर्यादाएं सवेरे उठकर बाबा से मिलन मनाने की और मुरली की है, दो बहुत सुंदर मर्यादाएं बाबा ने हम सबको दी है। हमारी मर्यादा देर तक सोने की नहीं है, जब सारा संसार सोया है तब हमारी मर्यादा है उठकर सभी को अच्छे वाइब्रेशंस देने की। यदि किसी का जीवन समस्याओं से भरा है तो उसे जान लेना चाहिए वो अमृत वेले की मर्यादा का पालन नहीं करते। अमृत वेले को ठीक करने से जीवन की अनेक समस्याएं स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। बाबा उदाहरण देते हैं इस पर, जैसे आपके घर में बिजली के बहुत सारे साधन लगे हों लेकिन मेन कनेक्शन में कोई तार लूज हो तो सारे ही नहीं चलेंगे, पंखा भी नहीं चलेगा, लाइट भी नहीं, फ्रिज भी नहीं। अगर उस कनेक्शन को ठीक कर दिया जाए तो सभी चलने लगेंगे। हम भी यदि अमृत वेले स्वयं की स्थिति को अच्छी तरह सेट करेंगे तो सारा दिन विघ्नों से मुक्त बीतेगा। अभी अभी 2-3 दिन पहले इस संबंध में हमने एक बहुत सुंदर बात सबने सुनी है, जो यहाँ थे उन्होंने यहाँ सुनी है। अभी अभी स्लोगन या वरदान में था अमृत वेले, स्वयं को बाबा के प्यार से भरपूर करो तो सारा दिन किसी के भी प्यार का खिंचाव नहीं रहेगा, किसी और के प्यार की इच्छा ही नहीं रहेगी। सवेरे यदि हम स्वयं को ईश्वरीय प्यार से भरपूर कर दें तो अनेक चीजों में भरपूर रहेंगे, सांसारिक इच्छाएं भी हमें अपनी ओर नहीं खींचेंगी, किसी की बातों का भी प्रभाव हम पर नहीं होगा। इसलिए सवेरे की इस मर्यादा को महत्वपूर्वक, इसको अच्छी तरह समझते हुए सभी को पालन करना ही चाहिए। हमने ऐसे बहुत बाबा के बच्चे देखे, बहुत स्ट्रॉन्ग, कि उन्हें सवेरे 4 बजे उठना ही है कुछ भी हो जाए, और इस दृढ़ संकल्प में उनको बहुत मदद मिलती है। आप रोज एक अनुभव करके देख सकते हैं कि सोते समय बाबा को अपना चाट देकर, बाबा से बातें करके, बाबा से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो। सभी ये अनुभव करके देखें कि बाबा मुझे चाहे अपने अंदर कर दो, चाहे बाबा को कहो कि मुझे 4 बजे उठना है, या बाबा को कह दो अधिकार से कि मुझे 4 बजे उठा देना, रोज उठाएगा। यदि स्वयं के अंदर संकल्प भरेंगे दृढ़, तो हम स्वयं भी उठेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे सुंदर अलार्म घड़ी है। इससे सुंदर अलार्म कोई होता नहीं। उस अलार्म को तो हम सभी बंद करके सो जाते हैं। सभी, प्राय सभी अलार्म वालों की ये शिकायत है कि रजाई से हाथ बाहर निकलता है और बटन फट जाता है, इसलिए उस अलार्म से तो सफलता नहीं मिलती। लेकिन बुद्धि का अलार्म जो हमें स्वयं जगाएगा, उसमें सुस्ती नहीं रहेगी। हमारी मुरली, बहुत भाई बहने मुरली सुनने में काफी ढीले होते हैं, कोई भी कारण दे देते हैं, देर से सोए, काम है, ऑफिस जाना है या और कुछ है। लेकिन मुरली के महत्व को जानने वाले मुरली का संपूर्ण रस प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सुख है मुरली में। जब भगवान ज्ञान की बरसात करता हो तब हम उसमें न भीगे, जब भगवान स्वयं सत्य हमारे सामने स्पष्ट करता हो तब हम कहीं व्यस्त हों, तो बहुत बड़ी मिसिंग होगी जीवन में, क्योंकि हमारी संपूर्णता में या जीवन को सहज बनाने के लिए या जीवन में सुख शांति लाने के लिए हमें ज्ञान के बल की भी बहुत आवश्यकता है। इक्वल जितना बल योग का चाहिए, उतना ही बल ज्ञान का भी चाहिए। इसलिए रोज स्वयं में ज्ञान का बल भर देना, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है जीवन की उन्नति के लिए। उसका कोई न कोई साधन बना अवश्य लेना चाहिए। मैंने पिछले साल क्लास में एक छोटी सी राय दी थी और बहुतों ने उसको प्रयोग किया है बहुत सफलता के साथ। वो छोटी सी राय ये थी कि अमृत वेले को अच्छा करने के लिए सवेरे उठकर अपने घर में जैसे भी संभव हो, घर में आप अकेले ज्ञान में हैं, उसका साधन बना लें। उठते ही बाबा की, चाहे अव्यक्त बाबा की, सरकार बाबा की मुरली सुन ले 10-15 मिनट। बहुतों ने इसको किया है। अगर पूरा परिवार ज्ञान में है तो बहुतों ने ऐसे किया कि बाबा की वीडियो ले गए हैं VCD और सवेरे चलाई तो ऐसा ही लगा कि घर में अव्यक्त बाबा आ गए हैं। वातावरण संपूर्ण रूप से बदल गया। इसके बाद नहीं है टेप है तो साकार बाबा की मुरली चला दी, 5 मिनट बाबा की आवाज जो चली तो ऐसा लगा सुस्ती के वाइब्रेशन दूर चले गए हैं, कोसों में दूर। बहुत अच्छा ये अनुभव रहा, क्योंकि सवेरे सवेरे हमें अपने ब्रेन को जागृत करने की आवश्यकता है। हम सोए थे, कहीं शरीर पर नींद का इफेक्ट था, कहीं स्वप्नों का इफेक्ट था, कहीं भोजन का इफेक्ट था, कहीं अनेक बीमारियों का इफेक्ट था। इसलिए जब मनुष्य उठता है तो हर व्यक्ति संपूर्ण रूप से फ्रेश नहीं होता, उसके विचार दबे रहते हैं, उसको जागृत करना आवश्यक है। और उठते ही आप बाबा से बातें करें, फिर योग अभ्यास करेंगे। मैं कल के लिए ड्रिल भी आपके सामने रखूंगा, उसका भी सभी को अभ्यास करना है। तो हमें जो बाबा ने मर्यादाएं दी हैं, वो हमारे लिए कल्याणकारी हैं। ये सभी बातें प्योरिटी में आती हैं। हमें अपनी प्योरिटी को बहुत बढ़ाना है। पवित्रता जैसी शक्ति और कोई नहीं है, किसी धर्म के लिए, अपने जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए। हमें, हम चेक करके देख सकते हैं अपने जीवन में पवित्रता की कमी अनेक विघ्न और समस्याओं का कारण है, क्योंकि हर एक अपनी पवित्रता और अपवित्रता को स्वयं जानता है, इसलिए स्वयं अपने जीवन पर दृष्टि डाल सकते हैं। पवित्रता की कमी माना विघ्नों का आह्वान, इसलिए पवित्रता में बहुत स्ट्रांग होना है। ये शक्ति हमारे साथ लंबा समय तक चलने वाली है। अब एक बात और आपको याद दिला दूं, इस सीजन की पहली मुरली से जो बहुत ही अच्छी है और सभी को उसका फायदा उठाना है। बाबा ने इस सीजन की पहली मुरली में कहा है, यदि तुम दिल से कहो मेरा बाबा तो क्या होगा? बोलो किसको याद है? हाँ, पहली बात, एक मच्छर मेरे चारों ओर घूम रहा है सुनने के लिए। यदि तुम दिल से कहोगे मेरा बाबा, इससे पहली बात, यदि तुम दिल से कहोगे मेरा बाबा, जुबान से नहीं तो दिल की आवाज बाबा तक पहुंचेगी और वापसी में मदद मिलेगी। मुझे ऐसा अनुभव रहा कि जो आत्माएं इस समय बाबा से अपनापन कर लेंगी, बहुत ज्यादा अपनापन, उनकी आवाज द्वापर युग के बाद भी बाबा तक पहुंचेगी और रिटर्न में मदद आएगी। इसलिए हम पूरी भक्ति काल में भगवान को मदद के लिए बांध सकते हैं अपने पन के द्वारा। अपने पन से सभी परिचित हैं, जो माँ बाप यहाँ बैठे हैं लौकिक में, जब वो अपने बच्चों को देखते हैं तो कैसा अपनापन होता है, और जब दूसरों के बच्चों को देखते हैं तो क्या फीलिंग रहती है। भले ही दोनों से ही प्यार हो, अपने बच्चों में अपनापन, सब उसके अनुभवी हैं। बाबा में अपनापन, कल हमने बाबा की मुरली में बहुत सुंदर बात सुनी सबने, यदि तुम समर्पित होते हो बाबा पर, यदि तुम कहते हो मेरा सब कुछ तेरा, तो बाबा का सब कुछ भी तुम्हारा। ऐसा भोला नाथ है बाबा, जबकि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने को। हम जो कुछ कहते हैं मेरा सब कुछ तेरा, वो है कितना, और उधर से जो कुछ आएगा वो कितना। तथा न केवल धन संपत्ति, सुख शांति शक्तियां संपूर्ण पवित्रता, वो सब तुम्हारी। इसलिए अपनेपन को बढ़ाना है, और इस अपनेपन के साथ जो बहुत बहुत काम की चीज है हमारी, बाबा पर अधिकार। बहुत सुंदर बात है ये, और हम सभी बाबा के बच्चे इस चीज को बहुत अच्छी तरह जान सकते हैं, जानते हैं। हम ही उस पर अधिकार रख सकते हैं, हमारे सिवाय औरों को तो अधिकार रखना आता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं। अधिकार को फील करें, अधिकार को यूज करें, वो हमारा है। अपनों पर अधिकार होता ही है, भक्त और भगवान की फीलिंग न रह जाए। कई बाबा के बच्चों में कुछ समय तक भक्त और भगवान की फीलिंग चल जाती है, वो नहीं, अपने पन से अधिकार की भावना। सभी माताएं समझ रही है ना, अधिकार वो मेरा है, इसलिए उस पर संपूर्ण अधिकार है। कल हम सभी को संपूर्ण साधनाएं करनी है। कल का दिन साधना के लिए है, कल का दिन बस हमारा अपने लिए है। पक्का कर देंगे सभी अपने संकल्पों में, कल का दिन केवल स्वयं उन्नति के लिए है, बाबा से सब कुछ पाने के लिए है। बहुत अच्छा समय हमारे पास है अब से और कल तक, इसमें हम कुछ तैयारी करेंगे। सबसे पहली चीज आप नोट भी कर लेंगे और सवेरे से ही अभ्यास करेंगे, जैसे ही आंख खुले ऊपर की ओर देखेंगे कि ज्ञान सूर्य अपनी शक्तियों की किरणें हम पर डाल रहा है। अभी आप महसूस कर लें इसे, आंख खुलते ही ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें हम पर पड़ रही है। बहुत सुखद फीलिंग होगी, हमें इसमें कुछ नहीं करना, शक्तियां देने वाला हमें दे ही रहा है, केवल हमें अपनी आंखें खोल लेनी है अंदर की और दिव्य नेत्र से ज्ञान सूर्य की किरणें प्राप्त कर लेनी है। मैं आपको तीन अभ्यास आपके सामने रख रहा हूँ जो आप रोज भी कर सकेंगे अमृत वेले या दिन में, और कल भी उनको करना है। कल सवेरे ज्ञान सूर्य की किरणें लेने के साथ उसके बाद में सभी को रूहानी दिल का अभ्यास करना है। क्या है रूहानी दिल? ये एक बहुत सुंदर अभ्यास बाबा ने सिखाया है योग के लिए, जिसके द्वारा हमारा योग बिल्कुल सरल हो जाता है। जिसको एकाग्रता ना होती हो, यह अभ्यास करने से अच्छी एकाग्रता हो जाती है। अभ्यास करेंगे, सबसे पहले स्वयं को देखेंगे, मैं फरिश्ता हूँ, आत्मा प्रकाश के शरीर में विराजमान है। देखेंगे अपना स्वरूप। दूसरी प्रैक्टिस, मैं फरिश्ता इस शरीर से निकलकर चला ऊपर की ओर सुख संवतन में। देखेंगे आप उठते हुए जा रहे हैं, आकाश सूर्य चांद तारे और ऊपर सूक्ष्म लोक में बाबा के सामने बाप दादा, दो फरिश्तों का सुंदर मिलन। बाबा से दृष्टि लेंगे, रोज दृष्टि ले सकते हैं, बहुत अच्छी बातें करेंगे। 10 सेकंड बाबा के पास ठहरेंगे। तीसरा अभ्यास, सूक्ष्म शरीर यहीं छोड़कर मैं चमकती हुई ज्योति उड़कर चली परम धाम सर्वशक्तिवान के पास। अब उसके किरणों के नीचे हूँ 10 सेकंड, फिर वहां से वापसी यात्रा। मैं आत्मा नीचे आई सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में बाबा के सामने, फिर मैं फरिश्ता नीचे उतरा, इस शरीर में प्रवेश कर लिया। ये स्पिरिचुअल ड्रिल है, रूहानी ड्रिल। एक हो गया ये चक्र, ऐसा 5 बार करेंगे और आप रोज सवेरे करें अपने घर में। ऐसा अच्छा अनुभव होगा, सुस्ती भी खत्म हो जाएगी, ब्रेन भी जागृत हो जाएगा। दूसरा अभ्यास भी ऐसा ही किया जा सकता है, बिल्कुल इससे मिला हुआ है, 5 स्वरूपों का अभ्यास। मैं एक ही मिनट में बता देता हूँ, मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति 5 सेकंड, मैं अपने देव स्वरूप में 5 सेकंड, इष्ट देव देवी 5 सेकंड, फिर ब्राह्मण। जब ब्राह्मण का अभ्यास करेंगे तो ऐसा देखेंगे सदगुरु के आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर, फिर मैं फरिश्ता, फिर मैं आत्मा देवता इष्ट देव ब्राह्मण फरिश्ता। 5 बार इसको करेंगे। ये दोनों अभ्यास हमारी योग की सुंदर ग्राउंड तैयार कर देते हैं। जिसका भी संसार में ब्राह्मणों में योग न लगता हो, एक दिन में योग लग सकता है ये अभ्यास करने से। आपके पास भी कोई आए योग नहीं लगता इस समस्या से, आप ये दोनों ड्रिल उन्हें सिखा दें। एक ही दिन में यदि वो 5 बार ऐसे अभ्यास कर ले, 5 अभ्यास 5 बार, एक ही दिन में चित्त स्थिर हो जाएगा। सवेरे फिर आप योग का आनंद लेंगे, मौन अच्छी तरह से रहेगा, स्वेच्छा से मौन रखना है, बाबा से बातें करते रहने हैं, बाबा से अपना लिंक बनाए रखना है, तो मौन का भी सुख मिलेगा। सारे दिन के लिए मैं आपको दो अभ्यास दे देता हूँ, कभी एक अभ्यास, कभी दूसरा, फिर पहला, फिर दूसरा, सारे दिन में अनेक बार करेंगे। पहला अभ्यास है जो बाबा हमें सदा सिखाते रहते हैं, बहुत सरल। आप याद करेंगे कि जैसे श्याम को बाबा दादी के तन में प्रवेश करेंगे, वैसे ही मैं आत्मा इस तन में आई हूँ, अवतार हूँ, मैं भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ गई हूँ आकर। ऐसा अभ्यास हर घंटे में एक बार, बहुत सिंपल है, कुछ भी कठिन साधना नहीं है, हम सबको ज्ञान है ये कि हम आत्माओं ने शरीर में प्रवेश किया है, इसको फील करना है कि परम नाम से मैं आत्मा चली चमकती हुई ज्योति शरीर में आकर प्रकृति में बैठ गई। बातें कर लेनी अपने से, मैं अंदर बैठी हूँ आत्मा, इस शरीर की मालिक हूँ, कंट्रोलर हूँ, न्यारी हूँ, शांति स्थापना के लिए इस धरा पर आई हूँ, इस संसार में मुझे पवित्र वाइब्रेशंस फैलाने हैं, इसलिए आई हूँ। दूसरा अभ्यास, ये भी एक दिल है, ठीक वैसे ही योग को सरल करने वाली, और हर घंटे आप करते रहेंगे, ये कई बार की जा सकती है, बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा भ्रकुटी सिंहासन पर, यहाँ से उड़कर चली सीधी परम धाम, शिव बाबा को टच किया, उसकी शक्तियाँ मुझ में आ गई, मैं आत्मा वापिस भ्रकुटी सिंहासन पर, फिर उड़कर चली परम धाम, ज्ञान सूर्य को टच किया, फिर वापिस आई प्रकृति की कुटिया में। ये ड्रिल बार बार करते रहेंगे, इनसे फायदा होगा, मन सारा दिन शांत रहेगा। हमें केवल एकाग्रता योग के समय ही नहीं चाहिए, सच्ची एकाग्रता वो है जिसमें मन सारा दिन ही लगभग शांत रहे, किसी भी उलझन से मुक्त, कोई भी दुविधा उसमें ना हो, कोई भी निगेटिविटी ना हो, मुक्त रहे, ऐसी स्थिति हम प्राप्त करेंगे इन अभ्यास के द्वारा। ये मैंने चार बातें आपको कही, आप इनमें से कभी कोई नंबरवार कर सकते हैं। ज्यादा इसलिए रखनी चाहिए अपने पास कि मन एक ही बात का अभ्यास करते करते कुछ समय के बाद उसमें धीरस्ता अनुभव करेगा। ये हरेक के मन की गति है ही, इतना भी अच्छा अभ्यास हम कर रहे हों, उसका अभ्यास रोज नहीं किया जा सकता, हमें उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। ऐसे योग के और भी बहुत सारे अभ्यास हैं। अब मैं आपके सामने रख देता हूँ कुछ स्वमान, योग के इन अभ्यासों के साथ कुछ स्वमान का अभ्यास करेंगे। कल सारा दिन ये मन और बुद्धि का काम रहेगा सबका, क्लासेज सुनते हुए भी ये अभ्यास करेंगे। देखिए, जब हम क्लास सुनते हैं, विशेष रूप से जब मुरली सुनते हैं, मैं आपको एक छोटा सा अनुभव सुनाऊं अपना। 73 में हमारे यहाँ दिल्ली में सबसे पहला मेला लगा, पहले भारत में मेले नहीं थे, वो नेशनल लेवल का मेला था, हर जोन ने एक एक स्टॉल लगाया था, तो एक स्टॉल मधुबन को मिला था, मधुबन का पूरा नक्शा बनाना था, तो मैं और दो तीन भाई उसके लिए गए थे। तो बात ये थी कि रोज 6 बजे वहाँ जाना होता था मेले ग्राउंड में, रामलीला मैदान में, तो मुरली रोज मिस होनी थी। अब एक मास मुरली मिस होनी थी, और मुझे मुरली से बहुत लगाव है पहले से ही, योग तो मैं कभी भी कर लेता हूँ, मिस हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुरली मिस हो तो मुझे सुख मिस हो गया ऐसा लगता है। तो मैंने क्या सोचा, तब ऐसा तो नहीं होता था कि मुरली मिल जाएंगी, बहुत छपकी है जैसे आजकल है कि लेके पढ़ लेंगे, सेंटरों पे भी लिमिटेड मुरलियां जाती थी और दिल्ली फंड भवन में बहुत सारे भाई बहने थे, इसलिए किसी को मुरली मिले ये संभव नहीं था। तो मैंने एक संकल्प किया, जैसे ही हम 6:15 मेले ग्राउंड में पहुंचते थे तो वहां संपूर्ण शांति होती थी। तो मैंने सोचा कि मैं रोज वहां पहुंचकर, तब मुरली 6:15 और 6:30 के बीच शुरू हो जाती थी, और अपने को सूक्ष्म वतन में स्थित करके बाबा से थोड़ी देर कुछ महावाक्य सुनूं। एक नया प्रयोग था पहली बार मेरे जीवन का, तो बहुत अच्छा हुआ। बस इस काम में मुझे 5-7 मिनट लगते होंगे, और मुझे ऐसा लगता था कि जो मिसिंग लग रही थी मुरली न सुनने की, वो खत्म हुई। जैसे सुन ली है, अमृत से भरपूर हो गया है बुद्धि और सब कुछ ठीक ठाक। तो ये एक ऐसा अच्छा अनुभव है। तब से मैंने क्या किया, तो मुरली सुनते हुए हमेशा ही सुनने के साथ साथ कुछ अभ्यास किए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। आप किया करें, कल भी सवेरे करेंगे। शुरू में तो ऐसा किया कि जैसे मुरली यहाँ सुन रहे हैं, सामने से दादी की आवाज आ रही है, लेकिन जैसे ऊपर से बाबा बोल रहा है। ऐसी प्रैक्टिस, कभी ऐसी प्रैक्टिस कि जिसमें आत्मा भ्रकुटी के आसन पर बैठकर मुरली सुन रही हूँ, और लक्ष्य रख लिया कि ये प्रैक्टिस कम से कम 10 बार अवश्य करनी है मुरली के समय। तब ये प्रैक्टिस के मैं सीखता हूँ और मुरली सुन रहा हूँ कम से कम 10 बार। तब ये प्रैक्टिस के बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं और मुरली सुन रहे हैं। तो ये ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे मन को स्थिर कर देती है, और हमें ये मनोविज्ञान का बहुत सुंदर सिद्धांत याद रखना चाहिए, जब मन शांत हो तो बुद्धि सब कुछ संपूर्ण रूप से ग्रहण कर लेती है। जो मुरली की बहुत सुंदर सुंदर बातें हम धारण करना चाहते हैं, वो साथ साथ हो जाएंगी यदि हमारा मन शांत हो, और ये सब मन को शांत करने के तरीके हैं। समझ लिया ना माताओं ने, मन यदि शांत हो बुद्धि की ग्रहण शक्ति संपूर्ण हो जाती है। यदि हमें सब कुछ धारण करना है साथ साथ, तो अपने मन को शांत कर लेना चाहिए। तो कल सवेरे की मुरली सुनते हुए सभी प्रैक्टिस करेंगे, इनमें से कोई भी मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप अभ्यास करेंगे मैं फरिश्ता हूँ, कम से कम 10 बार मुरली सुनते हुए, और 1-2-3 स्वमान आपको दे देता हूँ, आप चुन लेंगे उसमें से और उसका अभ्यास करते रहेंगे। एक बहुत सुंदर नशे का संकल्प बिल्कुल सिंपल हम करेंगे सवेरे से, और कई बार उसको रिपीट करेंगे, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल संकल्प है, लेकिन इससे मन नाचता रहेगा सारा दिन, तैयार हो जाएगा मन बाबा से शक्तियाँ और संपूर्ण रस भरने के लिए। मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यशाली हूँ क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहा है ना सभी भाग्यवान। यदि हम पूछें कि इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान कौन है, तो कौन होंगे, हाथ उठाएंगे कौन कौन है इस सभा में, ठीक है सभी है ना। दूसरा स्वमान साथ साथ में ये जोड़ दूं, बाबा इस साल अपनी मुरलियों में पहली मुरली दूसरी मुरली स्वमान और सम्मान का बैलेंस रखो, ये लहर चलाते आ रहे हैं, और जैसा हम देखते आए हैं हर सीजन की कोई एक बात लहर के रूप में चलती है, तो ये बात लहर के रूप में रहेगी स्वमान और सम्मान। दोनों का बैलेंस आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे पास स्वमान न हो और हमें सम्मान ज्यादा मिल जाए तो हमारा देह अभिमान बढ़ सकता है। बिना स्वमान के हम दूसरों को सम्मान भी नहीं दे सकते रियल रूप में, क्योंकि हमें दूसरों की कमियां दिखाई दे जाती हैं, तो सम्मान की भावना नष्ट हो जाती है। लेकिन यदि हम स्वमान देंगे तो सम्मान भी एक ऊंचे लेवल का रहेगा, कल सभी अपने को और सबको इष्ट देव देवी ही देखेंगे। जब दूसरों को देखेंगे ये सब इष्ट देवियां हैं, इष्ट देव हैं, मैं भी इष्ट देव हूँ, ऐसा लगेगा कि शांतिवन में सारे संसार के इष्ट देव देवियां इकट्ठे हो गए हैं। कितनी अच्छी शोभा होगी हमारी, हमारे शांतिवन की, जहाँ इतने हजार इष्ट देव देवियां इकट्ठे हो गए हों, वहाँ तो किसी की कोई मनोकामना पूर्ण रहेगी ही नहीं, ठीक है ना? सभी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले इष्ट देव देवियां हैं। तीसरा एक स्वमान भी आपके सामने है, जो बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, जो पुराने हैं, वो उसके साथ इसको भी कर सकते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शिव शक्ति हूँ, दुर्गा हूँ। और हमें ये जानना चाहिए कि इस तरह स्वमान का अभ्यास करने से जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है। बहुतों को आप में से पता है, मेरे पास जब कोई भी अपनी समस्याएं लेकर आता है तो मैं बहुत साल से, लगभग 10 साल से, हर समस्या का समाधान स्वमान के द्वारा सजेस्ट करता हूं। और आज तक 100% रिजल्ट है, सफल। ऐसी कोई संसार की समस्या नहीं जो श्रेष्ठ स्वमान के द्वारा समाप्त न होती हो। अच्छे अच्छे बिजनेसमैन 10 लाख के कर्ज में डूब गए, कोई उधार लिया हुआ दे नहीं रहा, डिप्रेशन हो रहा है, योग नहीं लगता है, ऐसे ऐसे केस हफ्ते 10 और 15 दिन में ठीक हो गए, स्वमान के अभ्यास किए, अपनी स्थिति श्रेष्ठ हुई, परिस्थितियां अनुकूल हो गई। बाबा ने हम सभी को इतना सुंदर और गुह्य ये सिद्धांत बताया है, जैसी स्वस्थिति वैसी ही परिस्थिति। इसको सभी ध्यान में, संसार की सभी परिस्थितियों को समाप्त किया जा सकता है श्रेष्ठ स्वस्थिति के द्वारा। हमारी स्थिति बदलते ही, हमारे मन के भाव और विचार बदलते ही परिस्थितियां बदलने लगती हैं। तो कल सभी हम इस तरह योग के रिल्स और स्वमान के अभ्यास करेंगे, और सवेरे से ही ऐसा लगे, मेरी तो इच्छा रहती है और सवेरे तो हो ही जाता है, कि शांति वन शांति धाम हो जाए, ठीक है। और ये निर्भर करेगा माताओं पर। होता क्या है कि सवेरे तो माताएं मौन रखती हैं, लेकिन जैसे ही नाश्ता खाती हैं तो ताकत आ जाती है ना बोलने की, फिर बोलना शुरू कर देती है। इसलिए दूसरी राय ये है कि कल भोजन हल्का करेंगे सभी, ठीक है, और शाम तक सभी मौन रखेंगे, और ऐसे अच्छे अभ्यास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि बाबा का मिलन यादगार हो जाएगा। ओम शांति। अभी 3 मिनट योग करके उठेंगी माताएं।